कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल की जिस पुस्तक का अध्ययन करेंगे वो है यहोशू। ये पुस्तक पुराना नियम की छठवीं पुस्तक है और इस पुस्तक का विषय है इसराइलियों का कनान देश में विजय प्रवेश। श्रोताओं, इससे पहले कि हम इस पुस्तक का अध्ययन आरंभ करें, आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं। मेरे मित्रों, आज हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। पुस्तक का नाम है यहोशू। लेकिन इसके पूर्व कि हम इस अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे अत्यंत दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों की आंखों को खोल दें, ताकि प्रभु आपके उन महान सच्चाइयों को अपनी इन आंखों से देख सकें। इतना ही नहीं, हम उस वचन के द्वारा जो आप आज हमें देने वाले हैं, उसके द्वारा अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सकें। हमारी प्रार्थना है कि आज के अध्ययन में आप हमें से प्रत्येक को सहायता प्रदान करें और आत्मिक रूप में बढ़ने में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हम व्यवस्था विवरण का अध्ययन कर रहे थे और जैसा कि हम जानते हैं कि पहली पांच पुस्तकें जिसे मूसा ने लिखी है और हम उसे पंच ग्रंथ अर्थात पंचतंत्र के रूप में जानते हैं। अब हम इसके बाद आगे की पुस्तक में आते हैं जो यहोशू की पुस्तक है। लेकिन इसके पूर्व के हम यहोशू की पुस्तक में आगे बढ़ें, आइए हम उसके परिचय को देखें। मित्रों, उत्पत्ति की पुस्तक में इसराइल का जन्म हुआ था और निर्गमन की पुस्तक में इसराइल का चुनाव किया गया और गिनती की पुस्तक में इसराइल राष्ट्र सिद्ध किया गया और लय व्यवस्था की पुस्तक में इसराइल लहू के द्वारा निकट लाया गया। तब व्यवस्था विवरण की पुस्तक में इसराइल को आचरण के नियम दिए गए। अब यहाँ पर यहोशू की पुस्तक में युद्ध और विजय का विवरण है। मेरे मित्रों, यहोशू की पुस्तक निर्गमन में आरंभ हुआ इसराइल का मुक्ति कार्य संपन्न करती है। निर्गमन की पुस्तक मिस्र से मुक्ति का वृतांत है, जबकि यहोशू की पुस्तक प्रतिज्ञा के देश में इसराइल का मुक्ति कार्य है। यहोशू की पुस्तक का मुख्य शब्द है अधिकार। परमेश्वर ने इसराइल के वंशजों को वह देश दिया, परंतु शर्त नहीं रखी थी। उसने अब्राहम से कहा था, जिसे हम उत्पत्ति की किताब उसके 17 अध्याय के 8 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। तथापि वहां इसराइल का निवास शर्तों पर आधारित था। उन्हें युद्ध करना था और उस देश पर अधिकार करना था, जैसा यहोशू ने अपने स्वर्गवास से पूर्व उन्हें चिताया था कि उनका वहां बसे रहना परमेश्वर के वचन के प्रति उनकी आज्ञाकारिता पर निर्भर होगा। तालमूद के अनुसार संपूर्ण वृतांत यहोशू ने लिखा था, परंतु अंतिम 5 पद पिनहास ने लिखे थे। यहोशू मूसा का उत्तराधिकारी था और एक महान सेनानायक भी था। मित्रों, उसका जन्म मिस्र देश में दास स्वरूप हुआ था और निर्गमन आरंभ होने के समय उसकी आयु 40 वर्ष की थी। मूसा द्वारा नियुक्त किए जाने के समय उसकी आयु 80 वर्ष की थी और जब उसका स्वर्गवास हुआ तब उसकी आयु 110 वर्ष की थी। यहोशू ने जंगल प्रवास के समय ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी और जब उन पर अमालेकियों ने उन पर आक्रमण किया था तब यहोशू ने इसराइलियों की सेना तैयार करके अमालेकियों को पीछे हटाया था। मेरे मित्रों, वह मूसा की सेवा करता था और इस संदर्भ में मूसा के प्रति उसकी निष्ठा और ईश्वर भक्ति धर्मशास्त्र में स्पष्ट दिखाई देती है। कादेश बर्ने में वह उन 12 भेदियों में था जो कनान देश का भेद लेने भेजे गए थे। वह उन 2 भेदियों में से एक था जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास प्रकट करके प्रोत्साहन का समाचार सुनाया था कि वे परमेश्वर अवश्य ही वह देश उन्हें देगा। यहोशू का अर्थ है यहोवा उद्धार करता है। नए नियम में यही शब्द यीशु कहा जाता है। यहोशू साहसी पुरुष था, वह परमेश्वर पर निर्भर था। विश्वास, अगुवाई, जोश और निष्ठा उसके गुण थे। वह नाम तथा काम से यीशु का प्रतीक है। किसी ने कहा है, यहोशू सिद्ध करता है कि एक सामान्य योग्यता वाला पुरुष कलीसिया का अगुवा बन सकता है। यहोशू की बुलाहट चमकीले शब्दों में आकाश पर लिखी हुई नहीं थी, परंतु एक प्राचीन द्वारा थी। जो परमेश्वर और यहोशू को जानता था और उसने देखा कि परमेश्वर उसे अगुआ होने के लिए उपयुक्त माना है। मेरे मित्रों, यहोशू की पुस्तक आज एक विश्वासी के लिए व्यवहारिक प्रसंग रखती है। प्रतिज्ञा का देश स्वर्ग का प्रतीक नहीं माना जाए, क्योंकि स्वर्ग में न तो युद्ध है और न ही विजय है। स्वर्ग परमेश्वर के अनुग्रह से वरदान स्वरूप प्राप्त किया जाता है, जबकि प्रतिज्ञा का देश उस स्थान का प्रतीक है जहां विश्वासी इस संसार में रखा जाता है। यहोशू की पुस्तक नए नियम में इफिसियों के पत्र की समानांतर है, क्योंकि इफिसियों के पत्र में विश्वासी को सब आत्मिक आशीषों की प्रतिज्ञा है, जिनका व्यवहारिकता और अधिकार एवं अनुभव संघर्ष और विजय पर आधारित है। ये आशीषें दैहिक कार्यों द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती हैं, परंतु विश्वासी के समर्पित जीवन में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा प्राप्त की जाती है। मेरे मित्रों, यहोशू की पुस्तक एक विधि है और वह परमेश्वर द्वारा विश्वासियों को दी गई आशीषों को प्राप्त करने की विधि प्रकट करती है। तो मित्रों, आइए अब हम यहोशू की पुस्तक के पहले अध्याय से अपना अध्ययन आरंभ करें। इस पुस्तक का विषय है यहोशू की नियुक्ति और कार्यभार। मेरे मित्रों, यहोशू की पुस्तक के प्रथम 12 अध्यायों में प्रतिज्ञा के देश में इसराइल के प्रवेश का वर्णन है और अध्याय 13 से 21 में हम देखेंगे कि उस भूभाग को विभिन्न गोत्रों में बांटा जा रहा है और अंत में इसराइल को यहोशू का अंतिम संदेश है। यहोशू की पुस्तक का महान विषय है अधिकार। अध्याय 1 में हम देखेंगे कि अधिकार का अर्थ क्या है और अध्याय के आरंभ में परमेश्वर स्वयं यहोशू को कमान सौंपता है और आज्ञा भी देता है। आइए हम पढ़ते हैं यहोशू 1:1। लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। यह पद वास्तव में व्यवस्था विवरण 34 से जुड़ा है, क्योंकि व्यवस्था विवरण 34 यहोशू ने ही लिखा था। अंग्रेजी की बाइबल यदि आप देखेंगे तो इस पद का आरंभ शब्द और से है। इससे सिद्ध होता है कि व्यवस्था विवरण 34 का लेखक यहोशू है, जैसा हम पहले देख चुके हैं। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं यहोशू 1:2 में लिखा है, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा, जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को देता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरा दास मूसा मर गया है। हमने देखा है कि मूसा को अनुमति नहीं थी कि वह इसराइल को प्रतिज्ञा के देश में ले जाए। सत्य तो यह है कि वह इसराइल को प्रतिज्ञा के देश में लाने योग्य नहीं था, क्योंकि वह व्यवस्था का प्रतिनिधि था और व्यवस्था द्वारा उद्धार नहीं होता है। व्यवस्था मात्र प्रकाशक है, उद्धारक नहीं। मेरे मित्रों, व्यवस्था हमें दिखाती है कि हम पापी हैं, अतः व्यवस्था कभी उद्धारक नहीं हो सकती थी। मूसा अपनी चूक के कारण इसराइल को प्रतिज्ञा के देश में लेकर नहीं जा पाया। समस्या व्यवस्था के साथ नहीं, मूसा के साथ थी, जैसे हमारे साथ भी है। व्यवस्था दर्शाती है कि हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर लिखा है कि मेरा दास मूसा मर गया है। केवल यीशु हमारा उद्धार करता, हमारा यहोशू ही हमें उन आशीषों के स्थान पर हमें ले जा सकता है जो उसने हमारे लिए रखी है। इस पद में लिखा है कि वह देश परमेश्वर ने इसराइल को दे दिया। उस देश पर इसराइल का स्वामित्व शर्त रहित था। उस देश की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की थी कि वह उसे और उसके वंशजों को कनान देश दे देगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने संपूर्ण उत्पत्ति की पुस्तक में अपनी प्रतिज्ञा को बार बार दोहराया है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में परमेश्वर ने इसराइल के साथ पलिस्तीन वाचा बांधी और उन्हें अनंत उत्तराधिकार में वह देश दिया। हम यहोशू की पुस्तक 1:3 में आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने उन्हें वह देश दे दिया और अब वह उनका है, परंतु उसका आनंद तभी पूरा होगा जब वे उस पर अधिकार करेंगे। जहां जहां वे पांव रखेंगे वह पूरा क्षेत्र उनका हो जाएगा। इसकी तुलना इफिसियों की पुस्तक उसके 1:3 में हम देखते हैं, जहां पर लिखता है कि बहुत कम विश्वासियों ने स्वर्गिक स्थानों की आत्मिक आशीषों को अपनाया। मेरे मित्रों, यह सच है कि कई बार लोग उन आशीषों को देखते हुए भी अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जबकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी जो उस पर विश्वास करता है उन आशीषों को प्राप्त करे। वर्षों पूर्व एक अंग्रेज व्यक्ति अमेरिका पहुंचा। वहां पहुंचते ही वह विलोप हो गया। इसी बीच उसका चाचा जो इंग्लैंड में रहता था मर गया और उसके नाम 22.5 करोड़ की संपत्ति छोड़ गया। पुलिस उस व्यक्ति की खोज में निकली, परंतु उसे खोज ना पाई, क्योंकि उसका जो पता उनके पास था वहां से वह जा चुका था। और बाद में पता चला कि वह एक सस्ते होटल के प्रवेश मार्ग में बर्फ में जमकर मर गया, क्योंकि उसके पास सबसे सस्ते कमरे की किराया देने के लिए भी पैसा नहीं था, जबकि वह करोड़ों का वारिस था। उसने अपने अधिकार को हाथ में नहीं लिया, उसने अपनी विरासत पर अधिकार नहीं किया। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने तो इसराइल को वह देश दे दिया था, परंतु उन्होंने उस संपूर्ण देश पर अधिकार नहीं किया। सत्य तो यह है कि उनके पास बहुत कम क्षेत्र था। आज अनेक विश्वासी इसराइल के तुल्य हैं। वे हर प्रकार की आत्मिक आशीष के वारिस हैं, परंतु वे उन प्रतिज्ञात आशीषों के लिए बिना ही आवारा लोगों की नए मार्ग में मर जाते हैं। यह कैसी त्रासदी है। मेरे मित्रों, यहोशू की पुस्तक हमें अपनी संपत्ति पर अधिकार करने की विधि सिखाती है, क्योंकि हमें संघर्ष करना है। और इसलिए इफिसियों अध्याय 6 में हमें परमेश्वर के अस्त्र और शस्त्र धारण करने को कहा गया है। हमारा आत्मिक बैरी हमसे युद्ध करता है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से है, और अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हमारा बैरी आत्मा है, वो अनदेखी आत्मा जो हमेशा परमेश्वर के लोगों को परेशान करती है। मेरे प्रियो, इस वचन में साफ साफ हमें बताया गया है कि हमारा बैरी इस संसार का हाकिम है, अर्थात शैतान, और उससे मुझे और आपको लड़ना है। और इसके लिए मुझे और आपको आत्मिक ताकतों की आवश्यकता है। और ये आत्मिक ताकतें हमें कहां से मिलेंगी? परमेश्वर के वचन से। हमें परमेश्वर के हथियार बांधने होंगे, विजय प्राप्त करनी होगी। तथापि यह आप और मैं नहीं, यीशु है जो विजयी होता है। हमें वही मिलेगा जो इसराइल को मिला, मुक्ति और संपदा। इसराइल की प्रत्येक विजय परमेश्वर द्वारा थी। यदि आप और मैं जय पाएंगे तो वह परमेश्वर की विजय ही है। हम विश्वास के द्वारा उस अद्भुत संपदा में प्रवेश करेंगे। मेरे मित्रों, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के उस दरवाजे के निकट तक आ जाते हैं, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं, कारण कि वे परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते हैं। आज मेरे लिए और आपके लिए भी एक अच्छा अवसर है कि हम इस पुस्तक के वचन को अपने जीवन में आने दें और उसके अनुसार बढ़ें, और उन आत्मिक हथियारों को जो परमेश्वर का वचन है जो हमें सामर्थ्य देता है, पवित्र आत्मा जो मेरा सहायक है, उसको थाम लें, उसे आने दें, ग्रहण करें, और तब देखें कि प्रभु यीशु में हम निश्चय ही विजय को प्राप्त करेंगे। हम यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसके 4 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने इसराइल को 300,000 वर्ग मील का क्षेत्र दे दिया था, परंतु उन्होंने केवल 30,000 वर्ग मील के क्षेत्र पर ही अधिकार किया। उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। क्या उन्होंने अच्छा काम किया? जी नहीं, उन्होंने केवल परमेश्वर द्वारा दी गई भूमि का केवल 10वां भाग ही अधिकार में लिया, जो आज के विश्वासियों द्वारा ली गई आत्मिक आशीषों के बराबर ही है। मेरे मित्रों, तब हम आगे पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक के 1 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा हुआ है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशू एक सामान्य योग्यता का व्यक्ति था। उसे प्रोत्साहन की आवश्यकता थी और परमेश्वर उसे बड़े ही अद्भुत रीति से प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर ने उससे कहा, जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। यह क्या ही उत्साह की बातें हैं कि परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसके 6 और 7 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, इसलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा काम सफल होगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने उसे 2 बार कहा, हिया बांध कर दृढ़ हो जा। वह उसे प्रोत्साहित कर रहा है। अब एक अति महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दे, जिसे हम यहोशू 1 अध्याय उसके 8 पद में पढ़ते हैं। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आप ध्यान दीजिए, मूसा से पहले धर्मशास्त्र नहीं था। परमेश्वर मूसा से आमने सामने बातें किया करता था और मूसा ने परमेश्वर द्वारा दिए गए एक एक निर्देश को ज्यों का त्यों निष्ठा पूर्वक लिख दिया। इस प्रकार बाइबल की प्रथम 5 पुस्तकें यहोशू के पास थी जो इसराइल के लिए उपलब्ध थी। इन पुस्तकों में वह सब कुछ विहित था जो उस देश में प्रवेश करने के लिए जानना आवश्यक था। उन्हें उससे हटना नहीं था, वरन उसका पालन करना था। मेरे मित्रों, यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसके 9 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू को परमेश्वर का वचन एक हाथ में और तलवार दूसरे हाथ में पकड़नी थी। उसे विश्वास में आगे बढ़ना था। परमेश्वर उसे फिर से प्रोत्साहित करता है कि वह हिया बांधे और दृढ़ हो। मेरे मित्रों, हम विश्वासियों को भी यहोशू की नाई हिया बांधना और दृढ़ होना है। हमें अपनी आत्मिक संपत्ता को विश्वास से प्राप्त करना है। स्मरण रखें कि हम वैरी की सीमाओं में हैं। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि यहोशू इसराइलियों को तैयार कर रहा है कि वे यरदन पार चलें। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं, तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी। ध्यान दीजिए कि यहोशू ने कमान संभाला और अपनी इच्छा नहीं, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसकी आज्ञा के अनुसार किया। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि वह उसके साथ रहेगा। मूसा मिद्यानियों के देश से जब लौटा तब वह डरा हुआ था, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, जिसे हम निर्गमन के पुस्तक 4 अध्याय उसके 12 पद में पाते हैं, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। यह परमेश्वर की विधि है। और परमेश्वर ने अंधकार और कठिनाई के समय यिर्मयाह को बुलाया और उससे कहा, जिसे हम यिर्मयाह 1 अध्याय के 19 पद में पढ़ते हैं, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। और हम इब्रानियों के पत्र 13 अध्याय के 6 पद में भी इस पद को पाते हैं, जो व्यक्त करता है विश्वास एवं साहस धारण करना। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मित्रों, ये वचन दाऊद के हैं, जो भजन संहिता 118 के 6 में से हैं। जब दाऊद ने यह गवाही दी थी, तब उसने अपना मन मस्तिष्क दृश्य से हटाकर अदृश्य पर लगाया था, अर्थात वह जीवित एवं सच्चे परमेश्वर से जुड़ गया था। उसे उस आत्मिक बंधन का बोध हो गया था जो उसके और परमेश्वर के मध्य था। उसका प्राण परमेश्वर के साथ जीवन की डोर से बंधा हुआ था। वह कह सकता था, यहोवा मेरा सहायक है। दाऊद जानता था कि परमेश्वर उसे मुक्ति दिला सकता है। मेरे मित्रों, यहोशू ने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे साहस दिलाया और आगे बढ़ने को कहा। परमेश्वर का वचन उसका अधिकार था, वचन उसके मुंह से अलग नहीं होता था, उसे उस पर मनन करने को कहा था, अर्थात उसे मनन करते रहना भी था, उसे वही करना था जो वचन में लिखा था। यह विश्वास का सूत्र है। तब हम आगे पढ़ते हैं यहोशू 1 अध्याय उसके 11 पद में, कि छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है, जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। उस देश पर इसराइल का स्वामित्व शर्त रहित है, परंतु उसमें वास करना शर्त पर आधारित है। इसराइल को उस देश पर अधिकार करना था। अतः यहोशू की पुस्तक का मुख्य शब्द विजय नहीं है, क्योंकि विजय तो परमेश्वर की होती है। यहोशू का संकेत शब्द अधिकार है। इसराइल को उस देश पर अधिकार करना था। जब इसराइल प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर चुका तब मन्ना बरसना बंद हो गया और उन्होंने वहां का अन्न खाया और संभवतः बैरियों से छीना हुआ मक्का था। अभी उन्होंने खेती करना आरंभ नहीं किया था। आपको स्मरण होगा कि उन्हें प्रतिदिन ताजा मन्ना एकत्र करना होता था। यदि मन्ना एक दिन भी पुराना हो जाए तो वह खराब हो जाता था, अर्थात सड़ जाता था और खाने योग्य नहीं रहता था। यही कारण है कि इफिसियों के पत्री 5 अध्याय उसके 18 पद में पौलुस कहता है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होना एक बार का काम नहीं है। आप कार में पेट्रोल भरवा कर उसे सदा के लिए मुहर बंद नहीं कर देते हैं। ऐसा करना कल्पना वरन मूर्खता होगी। अनेक विश्वासी सोचते हैं कि एक ही बार का अनुभव सदा का अनुभव है। मेरे मित्रों, यदि आप उसके साथ चलेंगे और उसके लिए जिएंगे तो आपको पवित्र आत्मा की दैनिक परिपूर्णता चाहिए। सत्य तो यह है कि आप दिन में 3 बार पेट भरते हैं तो आत्मिक मनुष्य को भी 3 बार भरना अनहोनी बात नहीं होगी। हम सबको पवित्र आत्मा की सतत परिपूर्णता की आवश्यकता होती है। उसे निहारना और उसमें व्यवस्थित होना है। मेरे प्रिय मित्र, जब परमेश्वर यहोशू के साथ था तो उससे बातें करते हुए उसने यह बताया कि जहां जहां वह जाएगा पवित्र आत्मा उसकी सहायता करेगा, अर्थात परमेश्वर उसके संग है। और इस वर्तमान समय में परमेश्वर मुझे और आपसे भी यह कहता है कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और आपको संभालेगा। उसका वायदा आज मेरे और आपके साथ भी है। क्या आप उस परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस आत्मिक दौड़ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं ताकि उस मिराज को, उस स्वर्गीय स्थान को प्राप्त करें? मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं यह विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने यहोशू के जीवन से अवश्य ही आत्मिक बातों को सीखा है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
ये जिंदगी वीरान है यीशु नाम के।